Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, wo aisa nahi hota. Jisko jyada chhipata hai, wo jyada yaad rakhta hai. पुण्य तो थोड़ा करता है, प्रचार प्रसार ज्यादा करता है, और पाप छिपा करके रखता है. तो जिसको ज्यादा गुह्य समझता है, ज्यादा कीमती जो गहना हो, भारी नोट हो, छिपा करके जहां रखी हुई है, याद रहता है बुद्धि में, दूसरों को नहीं बताता, लेकिन स्वयं तो याद रखता है कि ये जो है हीरा हमने यहां रखा हुआ है. जो ज्यादा दूसरों को नहीं बताना आता, वो अपना स्वयं याद ज्यादा रखता है, वही ज्यादा याद आएगा. फिर जिसको जीवन में ज्यादा याद रखा है, सदा तद्भाव भावित के अनुसार अंतिम में वो कर्म याद रहेंगे जिन पर हमने ज्यादा मन लगाया है. और जिन जो याद रहे वो भावी शरीर का प्रारब्ध हो गया, ये माना जाता है. अभी वो शरीर बना नहीं है, इसलिए इस शरीर को छोड़ने के पहले भावी शरीर को बना लेता है जीव कि ये हमें भोगना है. ऐसा भावी शरीर का प्रारब्ध पहले बन जाता है, और जैसे ही वो भावी शरीर का प्रारब्ध बन जाता है तो फिर मन का व्यापार शांत हो जाता है. फिर मन प्राण में मिल जाता है, और प्राण मिल जाता है जीव के साथ भूत सूक्ष्मों को लेकर के ईश्वर में, और ईश्वर इन सब को लेकर के देखते हैं. ईश्वर के अधीन हुआ ये भूत सूक्ष्म, सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व और जीव. उस समय फिर कर्मफल विधाता है ना ईश्वर. पहले तो सामान्य रूप से कर्म सारे के सारे दिखा दिए, संचित और क्रियमान. उनमें से जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया, जिनको वह भोगना चाहे उनको चुनने के लिए, निश्चित करने के लिए. और जितने को याद रखा, मान लिया कि उनका फल वो भोगना चाहता है, फिर ईश्वर के पास गया. ईश्वर देखते हैं कि इसने कौन से कर्म याद रखे हैं, उन कर्मों का फल 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कौन से शरीर में भोगा जा सकता है, इसका निर्धारण ईश्वर करता है. जीव तो खाली कर्म का निर्धारण करता है कि ये कर्म हमें, इन कर्मों का फलोपभोग करना है. ये मरने वाले जीव ने निश्चित किया, और फिर उन कर्मों का फल जिस शरीर में भोगा जा सकता है, ऐसे शरीर के रूप में परिणत होने की उसके भूत सूक्ष्म में शक्ति अपने संकल्प से ईश्वर प्रदान करता है. भूत सूक्ष्म याने स्थूल शरीर का उपादान कारण, जो भावी स्थूल शरीर मिलना है उसका उपादान कारण भूत सूक्ष्म, स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है. वह जब एक ईश्वर के पास गया तो उस समय उस भूत सूक्ष्म में सामान्य मात्र स्थिति है उसकी, किसी शरीर विशेष के रूप में अंकुरित होने की सामर्थ्य उसमें नहीं है. ईश्वर फिर जीवात्मा के कर्मों को देख करके उस भूत सूक्ष्म में अपने संकल्प से भावी शरीर के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं. तब वो भावी शरीर के रूप में जीवात्मा को, मरने वाले जीवात्मा को दिख जाता है. ईश्वर ने संकल्प करते ही उसका जो भूत सूक्ष्म है उसे भावी मिलने वाले शरीर के रूप में यहीं पर दिख जाता है और फिर उस शरीर को अपनी अहंता से वो पकड़ लेता है, फिर इस वर्तमान शरीर से अहंता को छोड़ता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में तृणजलुका का दृष्टांत आता है। एक तृणजलुका नाम का कीट होता है ना, वह घास पर चलता है और चलते चलते जब उस तृण के अग्रभाग में जाता है तो दूसरे तृण को अपने शरीर के आधे हिस्से से पकड़ लेता और आधा हिस्सा रख लेता है पूर्व आश्रयभूत जो तृण है उसी पर। और जब अच्छी तरह से दूसरा तृण पकड़ में आ जाता है आश्रय के रूप में तो पूर्व आश्रय में स्थित जो अपने शरीर का भाग है उसे पूर्ण रूप से हटा करके जो नया पकड़ा है उसमें स्थापित कर देता है। ऐसे ही यह मरने वाला जीव इसी शरीर में रहते रहते ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो भावी शरीर है उस शरीर को अपनी अहंता का आलंबन बना लेता है। वो बनाने से पहले तक इसी शरीर में उसकी अहंता रहती है। जैसे ही वो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर उसे दिखा फिर उसने उसे पकड़ लिया मैं के रूप में और पकड़ करके इस शरीर से अहंता का व्यावर्तन कर लिया, अहंता को हटा दिया। हाँ, इसी शरीर में रहते रहते तो जैसे ही भावी शरीर पकड़ लिया तो माना जाता है भावी जन्म प्रारंभ हुआ उसका। अब वो जो कर्म है वो कौन से याद रखे हैं उसने? यदि पुण्य कर्म याद रखे हैं तो पुण्य कर्म का फलोपभोग देवादि शरीर से होता है, तो देवादि शरीर की का संकल्प ईश्वर करेंगे कि इन पुण्य कर्मों का फलोपभोग उसे जिन इंद्रादि शरीरों से होना है इसका भूत सूक्ष्म स्वर्ग में इंद्रादि शरीर के रूप में परिणत हो जाए, ऐसा संकल्प ईश्वर का होगा। और इसी संकल्प से फिर निर्मित जो शरीर है उसे वो पकड़ेगा। उसे यहां पर कहा गया कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, तो पुण्येन यानी पुण्येन कर्मणा, जब पुण्य कर्म उसका भावी जन्म का प्रारब्ध बन करके फलोन्मुख होता है, संचित में से पुण्य कर्म हो या इस जन्म में किया हुआ पुण्य कर्म हो, जीव जिस किसी भी पुण्य कर्म को याद रखता है तो बाकी सारा फिर जितने को याद रखा उतना तो भावी शरीर का बन गया प्रारब्ध, और जो विस्मृत हुआ उसको कहा जाएगा संचित, वो संचित कोटि में चला गया और वो सबका सब रहेगा जीवात्मा की उपाधि बुद्धि में ही सूक्ष्म रूप से अपूर्व बन करके अदृष्ट बन करके रहेगा बुद्धि में। और इसी में से बार बार शरीर छोड़ते समय जो नया क्रियमान कर्म किया वह और ये संचित इनको देख करके भावी शरीर का प्रारब्ध बनाता जाएगा। प्रत्येक बार हरेक शरीर छूटते समय यही प्रक्रिया बनती है और प्रत्येक अज्ञानी की ऐसी ही होती है। तो पुण्य कर्म याद रहा तो ये उदान नाम का जो वायु है वह इन सब को जीवात्मा की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो 17 तत्व हैं वे और भावी शरीर का उपादान कारण जो भूत सूक्ष्म वो इन सब को लेकर के सुषुम्ना नाड़ी में विचरण करने वाला जो उदान नाम का वायु है वह ले जाता है इनको। कहां पर ले जाएगा? तो पुण्य न पुण्य कर्म उसका प्रारब्ध है तो पुण्यम लोकम नयति, यहां लोकम शब्द का अर्थ है शरीरम, लोक्यते कर्मफलम अनुभूयते अस्मिन् इति लोकः, ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा जिसमें स्थित होकर के अपने कर्म का फलोपभोग करता है, जहां रह करके उसे कहा जाता है लोक। तो जीवात्मा कहां रह करके अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग करता है, शरीर में, 84 लाख प्रकार के शरीर में, इसलिए शरीरों को भोगायतन कहा जाता है। भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। सुख ये पुण्य कर्म का फल है, उसका साक्षात्कार यानी अनुभव, और पाप कर्म का फल दुख का अनुभव, इसी का नाम भोग है। सुख का अनुभव करना या दुख का अनुभव करना ये भोग है। और जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव जहां होता है उसे कहा जाता है लोक, भोगायतन। वो शरीर में, बिना शरीर के जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। जिस शरीर में वह तादात्म्य अभिमान कर लेता है उसी शरीर में स्थित होकर के अपने प्रारब्ध कर्म का फल सुख दुख का अनुभव करता है, इसलिए शरीर को कहा जाता है भोगायतन, और भोगायतन का ही दूसरा नाम लोक भी है। और ये लोक 3 प्रकार का है, लोक यानी शरीर। एक उत्कृष्ट शरीर, दूसरा निकृष्ट शरीर, तीसरा मध्यम शरीर। उत्कृष्ट है मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि का शरीर, उसे माना गया पुण्यलोक, यानी पुण्य कर्म का फलोपभोग जिस शरीर में किया जाता है वह शरीर पुण्यलोक नाम से कहा जाता है। और उस शरीर में यह उदान वायु ही इस शरीर से निकाल करके जीव को ले जाती है, इसलिए केन उत्क्रमते, ये जो प्रश्न था ना, इस प्रश्न का उत्तर है कि उदानेन उत्क्रमते, ये इस शरीर में रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद और भावी शरीर के प्रारब्ध का निर्धारण होने के बाद भावी शरीर का निर्धारण यदि देव शरीर के रूप में हुआ है, पुण्य कर्म प्रारब्ध बनकर के सामने आया है, तो देव शरीर में इस जीवात्मा को ले जाता है मानव शरीर से निकाल करके उदान वायु। ये पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, कौन ले जाता है तो नयति का कर्ता होगा उदान, ये सुषुम्ना नाड़ी में विचरण करने वाला उदान ही देवलोक में ले जाता है। और पापेन पापम, वो जो प्रारब्ध कर्म है, कर्म की फिल्म देख करके निर्धारण करते समय पुण्य कर्म याद नहीं रहा, पाप कर्म ही याद रहा, वहां नहीं, यहीं पर बताया जा रहा है ना कि मानव शरीर छोड़ने वाले सब के सब देवता ही बनेंगे, ये थोड़ा ही है। तो मानव शरीर छोड़ते समय जिनका प्रारब्ध पुण्य कर्मात्मक बना उन मनुष्यों को तो उदान वायु ने मानव शरीर से देवता शरीर में पहुंचा दिया, और जिन मनुष्यों का शरीर छूटते समय वो कर्म पापात्मक ही याद रहा, और फिर वही पाप उसका भावी शरीर का प्रारब्ध बनेगा, उन्हीं सब कर्मों को लेकर के ईश्वर के पास जाएगा, ईश्वर देखेंगे, और ईश्वर के पास जाएगा का मतलब ईश्वर के अधीन होगा। ईश्वर तो कहाँ है, प्रत्येक के हृदय में है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वं तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो अपने ही हृदयस्थ जो ईश्वर है उन्हें दिखाएगा कि ये कर्म है। तो इन कर्मों का फिर फल जिस मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में भोगा जा सकता है, उन पाप कर्मों का फल उस शरीर का संकल्प ईश्वर करेंगे कि इस जीवात्मा का भूत सूक्ष्म उस शरीर के रूप में परिणत हो जाए। ऐसा जैसे वो संकल्प करेंगे ऐसा ही शरीर फिर उसे दिखेगा। ये मनुष्य शरीर में रहते रहते ही भविष्य में यदि ऐसा पाप कर्म ही याद रहा जो चूहा शरीर में भोगना है तो चूहा ही उसको दिखेगा। बिल्ली शरीर में भोगने लायक कर्म याद रहा तो बिल्ली शरीर दिखेगा। जो भी शरीर वो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के द्वारा संकल्प से उसे दिया जाएगा, वो शरीर उसे दिखेगा, अपनी अहंता को उसी शरीर में स्थापित करेगा, इस शरीर से वह अहंता समेट जाएगी, उसकी उस शरीर में जाएगी और वहां से फिर यह जीव को लेकर के उदान वायु उस शरीर में पहुंचाएगा। इसे कहा गया पापेन पापम लोकम नयति, लोकम नयति इन दोनों पदों का पापम के साथ भी अन्वय करना। तो पापेन यानी पापेन कर्मणा, तो पापात्मक कर्म ही फलोन्मुख हुआ तो वो पाप लोक यानी मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में यह उदान वायु मनुष्य योनिस्थ जीव को निकाल करके उस योनि में पहुंचा देता है। यह अर्थ निकलेगा और उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम। और जब शरीर छूटते समय पुण्य पाप दोनों भी याद रह जाए समान रूप से, पुण्य पाप दोनों याद रह गए तो वो दोनों का फलोपभोग मिश्र योनि मानी जाती है, मध्यम योनि मानी जाती है मनुष्य योनि। इसमें उत्कृष्ट सुख को सहन करने का भी सामर्थ्य नहीं है और अति दुख सहन करने का भी सामर्थ्य नहीं है मनुष्य योनिस्थ जीव में। इसलिए मध्यम सुख और मध्यम जो दुख है उसी को सहन कर पाता है, अत्यधिक दुख भी सहन नहीं कर पाएगा, अति सुख को भी सहन नहीं कर पाएगा। तो ये जो पुण्य पाप इन दोनों को समान रूप से याद रखा शरीर छोड़ते समय यदि, तो फिर ईश्वर देखते हैं कि इन पुण्य पाप कर्मों का फलोपभोग मानव शरीर से ही हो सकता है तो उसे भावी शरीर के रूप में मानव शरीर का ही संकल्प करते हैं। फिर ईश्वर के द्वारा संकल्पित वह जो मानव शरीर है उसके अहंता का आलंबन बन जाता है, इस शरीर से अहंता निकल जाती है, उदान वायु फिर इस शरीर से निकाल करके जिस शरीर में मृत्यु होनी है वहां से निकालता है और उस शरीर में पहुंचा देता है मनुष्य शरीर में। फिर तो इस प्रकार ये कहा गया कि उदान वायु ही जीवात्मा के उन सारी उपाधियों के साथ जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके भावी शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये उदान का कार्य है। तो ये सप्तम कंडिका में इस प्रकार ये चर्चा हुई, प्राण के पांच भेद बताए गए। तो तृतीय प्रश्न था ना कि आत्मानं प्रविभज्य वा कथं प्रातिष्ठते, ये एक प्रश्न था आचार्य पिपलाद जी के प्रति। तो इसका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया आचार्य पिपलाद जी ने कि प्राण पांच विभागों में अपने आप को विभक्त करके इस प्रकार इस शरीर में अलग अलग स्थानों में स्थापित करता है, और जीवित अवस्था में चार वृत्तियों का कार्य होता है और मृत्यु के समय उदान वायु का कार्य होता है, वह शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब ये जो पांचवा और छठवां प्रश्न है वो है कि कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम, ये पांचवा प्रश्न है और छठवां प्रश्न है। इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं आचार्य पिपलाद जी। इसके लिए बाह्य शब्द का अर्थ बताया गया था, जगत तीन विभागों में विभक्त है ना, एक अधिभूत, दूसरा अधिदैव, तीसरा अध्यात्म। तो बाह्य शब्द से तो लेना अधिभूत अधिदैव को, तो अधिभूत तथा अधिदैव का भी आश्रय ये समष्टि प्राण जिसको यहां उपास्य बताया जा रहा है वही है, वही अधिदैव जगत को भी धारण करके रखता है, वही अधिभूत जगत को भी धारण करके रखता है। ये पहले प्राण में गुण बताया था सर्वविधारकत्व गुण उपासना के लिए, उसी के सर्वविधारकत्व रूप गुण को स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न है कि कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम वा। तो सर्वविधारकत्व प्राण में दिखाने के लिए प्राण अधिदैव जगत को तथा अधिभूत जगत को, ये दोनों बाह्य शब्दित हैं, कैसे विधारण करके रखता है, कैसे धारण करता है, ये पंचम प्रश्न है। और छठवां प्रश्न है कि कथम अध्यात्मम वा, या अध्यात्म का धारण भी कैसे करता है अध्यात्म जगत का। तो इसमें ये पंचम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले प्राण के अधिदैव स्वरूप को बताया जा रहा है कि प्राण ही अधिदैव में अलग अलग पांच प्रकार का है। जैसे अध्यात्म पांच प्रकार है ना, उसके अध्यात्म पांच प्रकार हुए, प्राण अपान व्यान समान उदान, ऐसे अधिदैव पांच प्रकार है प्राण के। एक तो आदित्य, दूसरा अग्नि, तीसरा अंतरिक्षस्थ वायु, चौथा सामान्य वायु और पांचवा सामान्य तेज। ये पांच प्रकार हैं अधिदैव के, किसके अधिदैव स्वरूप प्राण के, ये पांच प्रकार हैं। एक आदित्य को माना जाएगा, आदित्य का एक प्रकार अधिदैव प्रकार, दूसरा अग्नि को, तीसरा अंतरिक्षस्थ वायु को, चौथा सामान्य वायु को। अंतरिक्षस्थ वायु और सामान्य वायु, इन दोनों में अंतर है, वो वायु विशेष है अंतरिक्षस्थ वायु, सामान्य वायु है जो खाली अंतरिक्ष में ही नहीं है, वो तो सब जगह है, वो सामान्य वायु है। और एक तेज, यद्यपि अग्नि और आदित्य भी तेज है लेकिन वो तेज विशेष है, आदित्य भी एक तेज विशेष है, अग्नि भी एक तेज विशेष है। और यहां तेज एक तीसरा प्रकार जो बताया जा रहा है वो है तेज सामान्य। ऐसे अधिदैव में आदित्य के पांच रूप बताए जाएंगे और ये पांच रूप आदित्य के क्या नाम, ये प्राण के जो अध्यात्म पांच रूप बताए गए थे उनमें से एक एक के अनुग्राहक हैं। और आधि भौतिक रूप प्राण का हो जाएगा अध्यात्म जो प्राण के रूप है, चक्षुरादि गोलकों में स्थित, उन गोलकों में स्थित तत्तद इंद्रियों से ग्राह्य विषयात्मक जो रूप है वो उसे माना जाता है अधिभूत रूप। इस प्रकार ये प्राण ही अधिभूत रूप से, अधिदैव रूप से और अध्यात्म रूप से अवस्थित है, और उस रूप से प्राण का ही अवस्थित होना ये उस जगत को धारण करना है। ये बताया जा रहा है आने वाली दो कंडिकाओं में, प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रकरण में। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरिओम।